ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीव्यास ततो जयमुदिरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से सप्तम स्कंद पंद्रह अध्याय श्लोक संख्या 52 चर्चा करेंगे।
निषेकादि समं शान्तो संस्कार संस्कृतो द्विज इन्द्रियेषु क्रिया ज्ञाना ज्ञानदीपेषु जुह्यति निषेक आदि संस्थानान्तो संस्कारो संस्कृते द्विजः इन्द्रियेषु क्रिया ज्ञाना ज्ञानदीपेषु जुह्यति। निषेकादि संस्थानान्ते संस्कारे संस्कृते द्विजः निषेकादि संस्थानान्ते संस्कारे संस्कृते द्विजः इन्द्रियेषु क्रिया यज्ञा ज्ञानदीपेषु जुह्यति निषेकादि समानन्ते संस्कारे संस्कृते द्विजा इन्द्रियेषु क्रिया यज्ञा संस्कारे संस्कृते द्विज इन्द्रियेषु क्रिया यज्ञा ज्ञानदीपेन जुह्यति।
अनुवाद अर्थात परी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की अनुवाद। द्विज को गर्भधान संस्कार के द्वारा अपने माता पिता के अनुकंपा से अपना जीवित्व प्राप्त होता है। जीवन के अंत में अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की जाती है और तब तक अन्य संस्कार भी संपन्न किया जाता है। इस तरह योग्य ब्राह्मण को कुछ समय के बाद भौतिकतावादी कार्यकलाप तथा यज्ञों में अरुचि हो जाती है, किंतु वह इंद्रिय ऐन्द्रिय यज्ञों को पूर्ण ज्ञान के साथ कर्मेंद्रियों के अर्पित कर देता है, जो ज्ञान की अग्नि से प्रकाशित रहती है। आप लोग दोहराइए। द्विज को गर्भधान संस्कार के द्वारा अपने माता पिता की अनुकंपा से अपना जीवत्व प्राप्त होता है। जीवन के अंत में अंत्येष्टि क्रिया संपन्न किया जाता है और जब तक अन्य संस्कार भी संपन्न किए जाते हैं, इस तरह योग्य ब्राह्मण को कुछ समय के बाद भौतिकतावादी कार्य तथा यज्ञों में अरुचि होता है, किंतु वह इंद्रिय यज्ञ के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्मेंद्रियों को अर्पित कर देता है, जो ज्ञान की अग्नि से प्रकाशित रहती है। तात्पर्य, जो लोग भौतिकतावादी कार्यकलाप में रुचि लेते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। पिछले श्लोकों में प्रवृत्ति मार्ग की व्याख्या की जा चुकी है। अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जैसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जिसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वह उच्च लोकों तक उठने की विधि त्याग कर निवृत्त मार्ग ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में वह भगवत धाम जाने की तैयारी करता है। जो लोग ब्राह्मण न होकर नास्तिक है, वे प्रवृत्ति या निवृत्ति मार्ग के विषय में कुछ नहीं जानते। वे हर हाल में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। अतएव हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्तों को प्रवृत्ति मार्ग छोड़ने और निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करने का प्रशिक्षण देता है, जिससे भगवत धाम वापस जाया जा सके। यद्यपि इसे समझ पाना कुछ कठिन है, किंतु यदि कोई गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत अपना ले और कृष्ण के समझ लेने का प्रयास करे, तो यह अत्यंत सरल है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझ सकता है कि कर्मकांड पद्धति के अनुसार यज्ञ करना समय का अपव्यय है और मात्र कर्मकांड के त्याग कर ज्ञान कांड को स्वीकार करना भी व्यर्थ है। अतएव नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखा है, कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय रंड अमृत बलिया जेवा खाय नाना जनी सदा फिरे कदर्ज भक्षण करे तार जन्म अधपते जाए। कर्मकांड या ज्ञान कांड का जीवन विष पात्र के तुल्य है, जो ऐसा जीवन पाता है उसको मानो भाग्य फूटे हैं। कर्मकांड पद्धति में मनुष्य को पुनः पुनः जन्म स्वीकार करना होता है। इसी प्रकार ज्ञान कांड में मनुष्य पुनः इस जगत में आना होता है। एकमात्र परम पुरुष ही पूज्य ही पूजा ही भगवत धाम जाने की सुरक्षा प्रदान करता है। जय श्री श्री राधा श्री हरि भगवान की, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणारघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणाललिता श्रीविशाखानितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि अस्यात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं सभी वैष्णव की कृपा प्रार्थना करता हूँ जिससे कि मैं श्रीमद् भागवतम के कुछ बोल सकूं। तो यहाँ इस श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कि श्लोक के अनुवाद में कहा गया है कि किस प्रकार संस्कार के बारे में बताया गया है। तो इस श्लोक में कहा गया है द्विजा जो गर्भधान संस्कार के द्वारा अपने माता पिता के अनुकंपा से अपना जीवत्व प्राप्त होता है, जीवन के अंत में अंत्येष्ट क्रिया संपन्न की जाती है और तब तक अन्य संस्कार भी संपन्न किया जाता है। इस तरह योग्य ब्राह्मण को कुछ समय के बाद भौतिक तब आदि कार्य तथा यज्ञों में अरुचि हो जाता है, किंतु वह इंद्रिय यज्ञ के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म इंद्रियों को अर्पित कर देता है जो ज्ञान की अग्नि से प्रकाशित रहते हैं। तो यहाँ जैसे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन धर्म नष्टे कुलम कृतस्न अधर्म विभव कृतः। ये कुल परंपरा कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन, और कुल के जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी पतन होने से कुल का जो कुल धर्म है या संस्कार है वो नष्ट हो जाता है। धर्म नष्टे कुलम कृतस्ना, ये धर्म नष्ट होने से क्या होता है, पतंति पितरो लोको लुप्तंति पिंडदक क्रिया, और स्त्रियां भी क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। तो भौतिक संसार में या हमारे सनातन धर्म के अनुसार संस्कार बहुत ही आवश्यक है। संस्कार के बिना इस संसार में जीना कैसे है, पशु के समान है। जैसे कि महाभारत में कहा गया आहार निद्रा भयमिथुनंच सामान्य एत पशु भी नराणाम, धर्म ही तेसो अधिको विशेषा धर्मेण ही ना पशु भी समान। कि धर्म से विहीन जो है उसका जीवन कैसा है, पशु के समान है। इसलिए धर्म बहुत ही आवश्यक है। अधर्म विभव कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया त्रिषु दुष्टाशुभाष्णय जायते वर्ण संकरा संकरो नरको एव कुल ध्यान कुलस्य च पतन्ति पितरो हेसा लुप्यन्ते पिंडदक क्रिया।
कि कुल धर्म के अगर नष्ट होता है तो कहां से शुरू होता है कुल धर्म नष्ट? ये संस्कार, जब ये स्त्रियां पतित हो जाते हैं। स्त्रियां कभी पतित होते हैं? जब ये पुरुष नहीं रहते हैं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार स्त्रियों को तीन अवस्था में संरक्षण चाहिए। जब ये बाल्य अवस्था में पिता के संरक्षण में रहते हैं, जौवन में पति के संरक्षण में, बुढ़ापे में पुत्र के संरक्षण में। क्योंकि अगर संरक्षण नहीं दिया जाए तो जो दुष्ट लोग होते हैं वो उसका फायदा उठा सकते हैं। स्त्री जो है इस संसार को बनाते हैं, जैसे कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि राज्य भ्रष्ट राजा दोषे, गृह भ्रष्ट गृहिणी दोषे। कि एक राज्य कभी नष्ट होता है? राजा अगर दुराचारी हो। और गृह कभी नष्ट होता है? जब भी गृह की स्त्रियां पत्नी दूषित हो जाए। तो इसलिए माताओं के इस संसार में बहुत महत्व है, क्योंकि उनके ही शुद्धता से यहां संसार में जो भगवान की अंश आते हैं वो भी शुद्ध रहते हैं। तो जो भी जीवात्मा मां के गर्भ में आते हैं वो माँ बाप के संस्कार पे निर्भर करता है कि वो कितने सुसंस्कृत है, तो उनके संस्कार के अनुसार जो संतानें होते हैं। इसलिए संस्कार जो है बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ प्रपात भी लिखते हैं कि बीजा जो गर्भधान संस्कार, ऐसे 10 विध संस्कार है। तो हमारा सनातन धर्म में जितने भी जीवन में जितने भी क्रियाएं हैं वो संस्कार पे आधारित है। जैसे बच्चा जन्म होता है, जन्म से वो जातकरण संस्कार होता है। फिर उसको जब बच्चा बढ़ता है तो उसका अन्न प्रसन्न संस्कार किया जाता है, उसको अन्न देना, वो मुख में अन्न देना भी इस संस्कार है। फिर उसको मुंडन कराते हैं तो चूड़ाकरण संस्कार होता है, तो कर्ण छेदन करते हैं वो भी एक संस्कार होता है। और जब ये स्कूल में जाता है विद्या आरोहण संस्कार होता है, तो फिर वो शादी होता है विवाह संस्कार, फिर गर्भदान संस्कार, ऐसे अनेक संस्कारों से वो सुसंस्कृत होकर वो अंतिम संस्कार, मरना भी एक संस्कार होता है। जब भी व्यक्ति मरता है उसे वहां भी श्मशान भूमि में संस्कार के द्वारा उसको दफनाया जाता है, क्योंकि ये संस्कार के बिना क्या है, संसार में सब पशु के समान है। तो संस्कार जो है हमको सुसंस्कृत बनाता है, हमें एक पद्धति देता है। संस्कार से हम सुसंस्कृत होकर हम जानते हैं सब। तो जैसे कि बताया गया है कि कलयुग में सब कैसे हैं, शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्रो, कलयुग में सब शूद्र हैं। तो शूद्र जो जन्म होता है वो शूद्र होता है, लेकिन कहते हैं संस्कार भवे द्विज, संस्कार के द्वारा द्विज बनाया जाता है। वेद पठे भवे विप्र, ब्रह्म जानात इति ब्राह्मण, ब्रह्म जानने से वो ब्राह्मण बनता है। तो संस्कार पहली सिद्धांत है कि संस्कार होना, संस्कार से ही एक संस्कार बिना व्यक्ति कैसे होता है, पशु के समान होता है। उसका आचरण व्यवहार, उसका चाल चलन पशु के समान होता है, क्योंकि ये संस्कार ही, जैसे कि प्रभुपाद कहते हैं पहले के श्लोकों में जो बताया गया है प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के बारे में, तो भौतिक समाज में इस ज्ञान को पता नहीं है। आज समाज में लोग क्या सोचते हैं, भगवान इस संसार में हमें किस लिए भेजे हैं, खाओ पियो मौज करो, इसलिए भेजे हैं। यहां थोड़ी भगवान तपस्या करने के लिए भेजे हैं। भौतिक लोगों का धारणा यही है, वो कहते हैं कि यह संसार में आए मतलब हमको आनंद लेना है। ये सच बात है, आनंद लेना है, लेकिन वो जानते नहीं कि किस चीज में आनंद लेना है। तो आनंद जो विषय है उसको हमें किस प्रकार लेना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि सुअर है, सुअर भी आनंद लेता है, तो उसे आनंद किस में है, मल खाने में। उसको अगर रसगुल्ला दिया जाएगा उसको आनंद लगेगा। हा? जैसे हमको कड़वा वस्तु दिया जाता है हमको आनंद आता है, तो ऐसे ही। लेकिन हित किस में है हमारा, कड़वा खाने से। हा? तो ऐसे ही हमारा जीवन में आनंद जो है हम जानते नहीं किसे, तो इसलिए हम सोचते हैं यही संसार में खाओ पियो मौज करो यही आनंद है। लेकिन यहां प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक व्यक्ति संस्कार प्राप्त नहीं करता है, संस्कारित नहीं होता है, तब तक वो नहीं जान पाएगा प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए पहला क्या चीज है, संस्कार है। और संस्कार कहां से शुरू होता है व्यक्ति का, गर्भ से ही। इसलिए गर्भदान संस्कार यहां पहले ही प्रपद अनुवाद में लिखते हैं, बीज को गर्भदान संस्कार के द्वारा अपने माता पिता के अनुकंपा से अपना जीवत्व प्राप्त होता है। तो जितने भी जीवात्मा आते हैं उनको गर्भदान संस्कार होना चाहिए, नहीं तो कैसे हो, जन्म तो हुए दो पैर दो हाथ लेके, लेकिन कैसे रहते हैं, पशु के समान। इसलिए संस्कार जो है बहुत आवश्यक है। संस्कार गर्भ से स्टार्ट होता है, तो माता पिता के मनोभाव पर वो निर्भर करता है। और किस लिए, इसलिए प्रभुपाद हमारे संप्रदाय में संस्था में बताते हैं कि विवाह मतलब इंद्र तृप्ति नहीं है, संतान उत्पन्न करने के लिए। चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि विवाह पत्नी किस लिए ग्रहण किया जाता है, पुत्र के लिए, और पुत्र किस लिए, पिंडदान के लिए। लेकिन आज समाज में जो संतान जन्म होते हैं उनके अगर पिंड खाएंगे माँ बाप क्या होगा, क्योंकि ऐसे संतान जो पाप क्रिया में लगे हुए हैं, पूरे जीवन में पाप करते हैं, तो वो अगर पिंडदान करेंगे तो पिंडदान क्रिया ही लुप्त हो चुका है। भगवद गीता में भगवान कहना कि लुप्यन्ति पिंडदो को क्रिया, क्योंकि पहले का सिस्टम ही गड़बड़ हो चुका है, पहले ही क्या हो गया है, अधर्म विभव कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया। कि आज समाज में जो स्त्रियां हैं लगभग दूषित हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि स्वतंत्र है, स्त्रियों को स्वतंत्रता मिल गया है, इसलिए दूषित हो चुके हैं। एक कथा आता है पद्म पुराण में, जहां शिवजी माता पार्वती को वार्ता कहते हैं हुए, वो उत्कल प्रदेश जो कि उड़ीसा है वहां की कथा कहते हैं। कहते हैं उड़ीसा प्रदेश, उत्कल प्रदेश में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे, और वो सुसंस्कृत थे, उनका वैदिक शास्त्र के अनुसार वो अपने जीवन यापन करते थे, और उनकी एक लड़की थी, एक ही संतान थी और एक लड़की थी, और एक लड़की होने के कारण और उसको इतना प्रेम दिए थे कि वो हमेशा उन्माद में रहती थी, वो किसको नहीं मानती थी, वो बहुत घूमती थी फिरती थी। जब भी उसका विवाह के समय हुआ तो माँ बाप ने सोचे इतना ये लड़की ये करता है ये अच्छा नहीं है, इसको बंधन में डाल देंगे तो ये थोड़ा कंट्रोल में आएगा। तो देखे कि एक, क्योंकि एक ही लड़की है तो एक वर चुने जिसको वो घर जमाए बना सके। तो एक सुंदर से ब्राह्मण लड़का देखे, गरीब घर का लड़का था, उससे उसका विवाह कर दिए। अब विवाह करने के बाद वो लड़की वैसे ही रहा, वो सुधरा नहीं, वो ऐसे ही, वो उसका पति घर पे नहीं रहता है। शास्त्र में स्त्रियों को मना है, पति अगर पति के सामने ही उनको श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि पति के लिए वो सजना चाहिए, नहीं तो दूसरे जो कामुक पुरुष होते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए वो ऐसे ही अपने जीवन में वो ऐसे ही भ्रमण करते थे, वो ऐसे ही बचपना था उनका, तो परेशान हो गए उनके पति। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो अपने सास ससुर को बोले, क्या करूं, ये तो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। उनके माँ बाप बोले, ऐसे पत्नी या ऐसे बेटी होने से अच्छा उसको मार डालना। तो कहते हैं उसकी पिता उसके जामाता को कहते हैं, देखो ऐसे पत्नी रहने से अच्छा है ना रहे, ऐसे पत्नी को त्याग देना चाहिए। और कहते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र में प्रमाण है कि ऐसे पत्नी के कारण कुल धर्म का नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं पूर्व जमाने में एक राजा हुए कंस के पिता के नाम क्या थे, उग्रसेन। तो उग्रसेन के पत्नी का नाम पद्मावती है। तो उन्होंने भी शादी किए और शादी के बाद उग्रसेन के साथ रहने लगे और कुछ दिन के बाद उन्होंने अपने मायके माँ के घर गए और माँ के घर जाने के बाद उन्होंने ऐसे ही अपने सहेलियों के साथ अपने को सजाकर पूरी तरह से श्रृंगार के साथ वो जंगल में भ्रमण कर रहे थे। और उसी समय एक राक्षस उसी मार्ग पे जा रहा था और उसने पद्मावती को देखकर उनके प्रति आकर्षित हुए, उनके ऐसे शारीरिक गठन को देखकर आकर्षित होके वो पता लगाए कि क्योंकि राक्षस भी समर्थ होते हैं, उनको भी पता चल जाता है उस जमाने में, इस जमाने में नहीं। तो उन्होंने पता लगाया ये कौन है, कहाँ का राजकुमारी है या रानी है, और ये पता लगाने के बाद उनको पता चला कि उग्रसेन की पत्नी है। तो ठीक हूबहू उन्होंने उग्रसेन का स्वरूप लिया और आकर उनके पास आए और उनके साथ रहकर उनके साथ सहवास किए। और उसके बाद परिणाम क्या हुआ, कंस उत्पन्न हुआ। तो इसलिए स्त्रियों को शास्त्र में कहा गया है, इसलिए स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, क्योंकि स्त्रियों के द्वारा ही समाज बनता है। आज समाज में जो उत्पात हो रहा है उसके कारण क्या है, ये अवांछित संतान है। अवांछित संतान के कारण ही आज जो कुल धर्म है वो नष्ट हो चुका है। और क्या हो चुका है, कुल की परंपरा नष्ट हो चुके हैं और लुप्यंती पिंडदक क्रिया और पिंडदक क्रिया भी नष्ट हो चुका है। इसलिए संस्कार पहले से ही प्रारंभ से ही ये संस्कार जरूरी है। गर्भदान संस्कार से ही एक मानव बनता है, नहीं तो बिना गर्भदान संस्कार से क्या है, पशु ही जन्म लेंगे। भले ही हाथ पैर मुख मनुष्य का हो, लेकिन पैदा कौन हो रहे हैं यहाँ संसार में, सब पशु। और कलयुग में लगभग यही हाल है, कोई संस्कार नहीं है, कोई इस संस्कार पद्धति को पालन नहीं करते हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो इंद्रिय तृप्ति से शारीरिक संभोग से क्या उत्पन्न होगा, जैसा उनका मनोभाव रहेगा। जैसे कि कहा जाता है जो शिवाजी महाराज है, उनके जन्म से पहले जीजाबाई प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे ऐसा वीर पुत्र दो जिससे कि इस भारत वर्ष को वो शासन कर सके, समाज को एक वीर पुरुष चाहिए जिससे मुगल के अत्याचार से सके। तो उन्होंने भगवान के विषय में सुनते थे, भगवान की लीलाओं को सुनते थे और उनका मानसिक चिंतन यही था कि किस प्रकार एक वीर संतान उत्पन्न करे। लेकिन आज समाज में ऐसा कोई है, ये संस्कार ही टूट चुका है, कोई संस्कार नहीं चाहता है और सभी लोग इस जीवन में भोग चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सब प्रवृत्ति मार्ग में दौड़ रहे हैं, कोई निवृत्त नहीं होना चाहते हैं। क्योंकि अगर संस्कार, संस्कार जो है एक पद्धति है जिससे कि, जैसे हमारे संप्रदाय में कहते हैं, अगर विवाह होता है पति पत्नी को गर्भधान संस्कार के लिए पूजा पाठ करना पड़ता है, मंदिर में जाना पड़ता है, उस दिन 16 माला या 64 माला जप करना पड़ता है, तो ये तपस्या करके और तपस्या के बल पर भगवान को मन में धारण करके, भगवान को चिंतन करके जब इस पुत्र की कामना किया जाता है तभी एक वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है। लेकिन भौतिक समाज में ऐसा कोई उनके मनोभाव नहीं है, वो खाली अपने शारीरिक सुख के लिए इंद्र तृप्ति के ही साधन बनाकर संभोग करते हैं और जिसके कारण स्वरूप क्या होते हैं, ऐसे अवांछित संतानें उत्पन्न होते हैं और जिनके कारण आज समाज पूरी तरह से बिगड़ चुका है। इसलिए संसार में संस्कार होना ये बहुत आवश्यक है। ये संस्कार जो है ये पद्धति है कि किस प्रकार एक संतान सुसंस्कृत होकर इस समाज में आए और ऐसे संतान ही इस समाज की रक्षा करेंगे, नहीं तो बिना संस्कार के तो पशु आएंगे तो पशु तुल्य कार्य करेंगे, वो कभी निवृत्ति धर्म को निभा नहीं सकते हैं। पशु क्या करेगा, वो भोग में ही रहेगा, आहार निद्रा भय में उत्थनम, जो सामान्य है पशु के लिए यही कार्य करेगा और यही प्रवृत्ति मार्ग है। और एक प्रपद अंतिम में लिखते हैं, तात्पर्य के अंतिम में, जो कर्म कांड ज्ञान कांड ये जो है ये प्रवृत्ति मार्ग का ही एक रास्ता है। ये कैसा है, विषय भंड विष के समान है, विष के घड़ा है और इसको जो भी व्यक्ति अमृत सोच के पीता है क्या होता है, नाना जुनी अधपते जाए। और क्या होगा, कदर्ज भक्षण करे, गंदा चीज खाता रहता है, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानम, चुबाया हुआ चीज को ही हम चुबा रहे हैं तो उसमें कहां आनंद मिलेगा, लेकिन उसमें ही आनंद, हाँ जैसे चुंगम चुबाते हैं ना, लोग चुबाते रहते हैं उनको आनंद मिलता है, हम जो वास्तविक विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसवर्जस रसपिश्च परम दृष्टान निवर्तते। तो जो विषय से ऊपर हुआ है, जो भगवान की चरण में आश्रय लिया है, उन्हें कैसा लगता है? ये विषय विष के समान लगता है। इसलिए वो इस विषय को आस्वादन में उनकी रुचि नहीं होता है, क्योंकि वो उच्चतर रस को प्राप्त कर लिया है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवज्जस्य परम दृष्टान निवर्तन्ते। वो परम रस को प्राप्त कर लिया, आध्यात्मिक रस। तो भौतिक समाज में या भौतिक वस्तु में आनंद नहीं है, लेकिन जो भौतिकतावादी है उनको भौतिक वस्तु में ही आनंद दिखता है, उन्हें आध्यात्मिक आनंद नहीं दिखता है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद प्राप्त किए हैं, उन्हें ये भौतिक वस्तु तुच्छ लगता है, उसमें वो आनंद नहीं देखते हैं। उनको वो चर्वित चर्वणा, वो जानते हैं कि कितने युगों तक, कितने सालों से, कितने जन्म में ये सब किए हैं, कितने जन्म से आहार निद्रा भय मैथुन करके आए। लेकिन इस जन्म में जो व्यक्ति इस संस्कार पद्धति से आते हैं, तो वो जानते हैं उसके पारिवारिक संस्कार रहता है, कि माँ बाप की संस्कार रहता है, उनके खानदानी संस्कार रहते हैं। तो इससे वो उनको पता चलता है कि किस प्रकार विषय में आनंद नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कभी उनका कुल परंपरा नहीं है, कुल धर्म नहीं है, हाँ, उसको ये सब के ज्ञान नहीं रहता है। आज भी गांव में चला जाएंगे तो एक पद्धति है, गांव में भी विवाह का संस्कार होता है, गर्भदान संस्कार होता है, हमने देखा है। जब विवाह होता है, फिर जो दूल्हा दुल्हन रहते हैं उनको फिर यज्ञ में, एक तो विवाह यज्ञ होता है, फिर गर्भदान संस्कार के लिए फिर से यज्ञ होते हैं, उनको पद्धति से संस्कारित किया जाता है। आज भी ऐसे है समाज में, लेकिन शहर में कैसा है, कोर्ट में गए, मैरिज कर लिए, हो गया। लेकिन गांव में आज भी ये संस्कार कुछ हद तक बचा हुआ है, लेकिन समय आएगा ये भी लुप्त हो जाएगा, और हो रहा है। गांव में भी यही समस्या है। इसलिए संस्कार के बिना ये समाज में जो वास्तविक निवृत्ति मार्ग को प्राप्त करना असंभव है। तो ये एक स्टेप है, जैसे भगवान ने वर्णाश्रम धर्म बनाए हैं, उसका रीजन क्या है, उसको बनाना जरूर, पालन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे वो भगवान तक पहुंच पाएगा। इस आश्रम धर्म को पालन करके वो भगवत धर्म को अनुकरण करेगा। तो ऐसे ही ये संस्कार पद्धति भी, जैसे कि प्रभुपाद भी लिखते हैं कि भौतिकतावादी कार्य तथा यज्ञ में अरुचि हो जाता है, किंतु वह इंद्रिय यज्ञ के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्मेन्द्रियों को पूर्णतः अर्पित कर देता है। को जो व्यक्ति इसे संस्कार को पालन करता है, वो धीरे धीरे भौतिकतावादी कार्यकलाप से वो छुटकारा पाता है। वो जान जाता है कि भौतिक समाज में सब नश्वर है, और वो धीरे धीरे शुद्ध होकर वो भगवत धर्म को पालन करता है। जैसे कि जन्मना जायते शूद्र संस्कार भवेत् द्विजः, जन्म से शूद्र होते हैं, जब वो संस्कारित होता है उसको पद्धति से द्विज बनता है, द्वितीय जन्म होता है। और जब शास्त्रों का अध्ययन करता है वो विप्र बनता है, और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो ब्रह्म को जानता है। तो इसलिए संस्कार के माध्यम से हम प्रवृत्ति और निवृत्ति इस मार्ग को जान सकते हैं और धीरे धीरे भगवान के पास जाने की जो सीढ़ी है उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भले ही कुछ संस्कारित नहीं हुआ है लेकिन उसको पालन करना बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन कोई अगर कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लेता है तो वो धीरे धीरे वो इस बात को जान लेगा कि किस प्रकार। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव हमारा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन भक्तों को प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करने के प्रशिक्षण देता है। तो यहाँ हमारा जैसे ही एंट्री होता है यहाँ क्या होता है, संस्कार शुरू होता है। हमारा संप्रदाय में क्या होता है, दीक्षा होता है। तो हमारा दीक्षा जो होता है वो क्या होता है, हमारा संस्कार भवित बीजा। तो हम सबका द्वितीय जन्म हो गया, माँ बाप के गर्भ में जन्म हुआ एक, और अभी गुरु से दीक्षा लेकर हमारा क्या हुआ, द्वितीय जन्म। और द्वितीय जन्म होने के बाद हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस माध्यम से हम इस मार्ग को जान लिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को। तो हम जान लिए कि ग्रहण करना और छोड़ना इसमें किसमें आनंद है, आप समझ सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम अगर ग्रहण करते ज्यादा भरपेट खा लेते हैं तो आनंद मिलता है, गले तक खा लिए, खाने के टाइम तो आनंद आया, फिर भर जाने के बाद कैसा खाली करे वो टेंशन होता है, खाली होने के बाद ज्यादा आनंद आता है। हाँ, इसलिए आनंद त्याग में होता है, त्याग से ही आनंद मिलता है। इसलिए यहां प्रभुपाद नरोत्तम दास ठाकुर के गीत को रचना करते हुए कहते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भंड अमृत बोलिया देवा खाए। ये कर्म कांड ज्ञान कांड की पद्धति जो है ये केवल विषय का विष का पात्र है। जो व्यक्ति इसको अमृत सोच कर खाता है नाना जोनी अधपते जाए। तो कर्म कांड ज्ञान कांड इसमें क्या बताया गया है कि किस प्रकार इंद्र तृप्ति करना है। कर्म कांड के माध्यम से ये देवी देवता का पूजा करो ये फल मिलेगा, वो देवी देवता ये वो, हाँ ये यज्ञ करो वो यज्ञ करो, तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम कहाँ जागे, तेतम भुक्ता स्वर्ग लोको विशालम क्षीणे पुण्य पुनः मत्य लोक विषमति एवं तय धर्म मन प्रपन्ना गतागतो काम कामल भन्ति। हम स्वर्गलोक हाँ तक जा सकते हैं ये पूजा पाठ करके देवी देवता का कर्म कांड के माध्यम से, लेकिन क्या होगा जैसे ही हमारा पूजा पाठ का पुण्य खत्म हो गया, खीणे पुण्य पुनः मत लोक विसंति एवं त्रय धर्म मन प्रपन्ना गतागत काम काम लभन्ति। इसलिए जो ये तीन धर्म है त्रय धर्म इसको मन से निकाल देना चाहिए, नहीं तो इस संसार में आना जाना इस जन्म मृत्यु के चक्र में हमारा बारंबार आना जाना चलता रहेगा। और इस प्रकार कहते हैं नाना ज्योनि सदा फिरे, अलग अलग ज्योनि में हमेशा भ्रमण करते रहेंगे हम, और क्या खाएंगे, कदर्ज भक्षण करें, गंदा ही खाएंगे। हाँ, कभी सुअर बनेंगे मल खाएंगे, कभी कुत्ता बनेंगे कचरा खाएंगे, कभी कुछ जोनी में जाएंगे। हाँ, मनुष्य बनने के बाद भी वही खाते हैं लोग। हाँ, मनुष्य जोनी मिला है अमृत खाने के लिए, लेकिन लोग क्या खाते हैं, कचरा खाते हैं। हमें पता नहीं, भगवान कहते हैं गीता में जो भगवान को भोग लगा के नहीं खाता है वो क्या खा रहा है, पाप। तो जो भगवान को भोग नहीं लगाता है वो पाप खाते है। तो अनेक जन्म से कचरा खाए अभी मनुष्य बनने के बाद भी वही खाते हैं। तो ऐसे ही चक्कर चलता रहेगा, नाना जनी अधपते जाए, कदर्ज भक्षण करे। इसलिए इस चक्र को बंद करना है तो हमें क्या करना है, इस संस्कार के माध्यम से ही हम निवृत्ति मार्ग को अपनाकर हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, एकमात्र परम पुरुष की पूजा ही भगवत धाम जाने की सुरक्षा प्रदान करती है। प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंतिम में लिखते हैं कि एकमात्र परम पुरुष की पूजा, कौन है परम पुरुष, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, तो यही परम पुरुष है। तो आज श्रीपाद ईश्वरपुरी के तिरुभाव तिथि है, तो ईश्वरपुरी के बारे में गौर गणदेश दीपिका में कहा गया है कि तस्य शिष्यो अभवच्छे मानिक्यम राष्ट्रपुरी यति कलायामास श्रृंगारम श्रृंगार फल आत्मकम। के माधवेन्द्रपुरी जो है कहते हैं कि वो श्रृंगार रस के साधक थे, भगवान की जो अलग अलग रस है, सॉरी ईश्वरपुरी जो है श्रृंगार रस के साधक है, जैसे शांत रस, वात्सल्य रस, जो पांच रस है हमारा, हाँ, दास्य रस, साक्ष्य रस और श्रृंगार रस या माधुर्य रस। तो ये ईश्वरपुरी जो थे ये भगवान के श्रृंगार रस या माधुर्य रस की साधक थे, और उन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने ही पहला, जो माधवेन्द्रपुरी ने प्रेम रूपी बीज को डाला, जो कृष्ण प्रेम का बीज स्वरूप है माधवेन्द्रपुरी, उनके शिष्य हुए ईश्वरपुरी। और श्री ईश्वरपुरी इसलिए भी विख्यात है कि उनके गुरु के प्रति बहुत ही समर्पित भक्त थे। तो ईश्वरपुरी गुरु सेवी के नाम से विख्यात है, और रामचंद्रपुरी जो माधवेन्द्रपुरी के दूसरे शिष्य है वो गुरु अपराधी से विख्यात है। तो ईश्वरपुरी को वरदान दिए थे माधवेन्द्रपुरी के, कृष्ण तुमा के हो को प्रेम धन, के कृष्ण तुम्हारा प्रेम धन हो। और ईश्वरपुरी इसीलिए आगे जाकर चैतन्य महाप्रभु का गुरु बने, और इनका जन्म कुमारहट नामक जगह में जन्म हुए थे, जो आज हलिस शहर के नाम से जाना जाता है। तो उनका राड़ देश में, जहां नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ, राड़ देश कहते हैं, तो उसी देश में उनका जन्म हुआ था। कुलित ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, और उनके पिता का नाम श्याम सुंदर आचार्य था, और उनके माता के नाम के कुछ उल्लेख नहीं था। तो कहा जाता है कि यही ईश्वरपुरी जो है नित्यानंद प्रभु को उनके माता पिता से 12 साल के उम्र में नित्यानंद प्रभु को लेके चले गए थे, वही ईश्वरपुरी है। और आगे ये नित्यानंद प्रभु उनके साथ रहे, नित्यानंद प्रभु उनके साथ भ्रमण किए हैं। और कहा जाता है कि ईश्वरपुरी जब नवद्वीप आए तो वो अपने आप को कभी प्रकट नहीं कराए कि वो भगवान के शुद्ध भक्त है करके, तो वो हमेशा भ्रमण करते थे नवद्वीप में। और एक दिन भ्रमण करते करते वो शांतिपुर आदित्य आचार्य के घर में चले गए, जहां की भागवत कथा चल रहा था, और वहां जाकर उन्होंने आदित्य आचार्य की कथा में बैठ गए, दूर से छिपकर बैठे। लेकिन आदित्य आचार्य वो समझ गए कि ये कोई शुद्ध भक्त है। उन्होंने वहां कथा तो कर रहे थे लेकिन वो बार बार उनका नजर जो है ईश्वरपुरी की ओर जाता था। तो कुछ समय के बाद आदित्य आचार्य कहते हैं, आप कौन हैं? आप ऐसा मालूम पड़ता है कि आप कोई वैष्णव सन्यासी है। तो ईश्वरपुरी कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो एक क्षुद्र जीव हूं, मेरा कोई योग्यता नहीं है, मैं कोई वैष्णव सन्यासी नहीं हूं, मैं एक क्षुद्र जीव हूं। तो ऐसे वो मना करने के बाद जब ये देखा ये मान नहीं रहे ये वैष्णव सन्यासी है, तो आदित्य आचार्य ने वहां श्रीपाद मुकुंद बैठे थे, मुकुंद को इशारा किया। तो मुकुंद ने कुछ भगवान कृष्ण लीला के गीतों को गाने लगे। और जब कृष्ण लीलाओं को श्रवण किए, जैसे कहा जाता है कृष्ण नाम महामंत्रेर यही तो स्वभाव, जारे जपे तारे कृष्ण उपजाय भाव, ऐसे ही भगवान की लीलाओं का भी यही स्वभाव है। जब भक्त भगवान की लीलाओं कथाओं को सुनते हैं वो अपने आप को भाव को रोक नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही जब उन्होंने गाया गीतों को, गाने के बाद मुकुंद के मुख से कृष्ण लीलाओं को सुनने के बाद वो पूरी तरह से भावावेश हो गए, उनके शरीर में पूरी तरह से अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगा, रोने लगे, लोटपट होने लगे। और ये देखकर आदित्य आचार्य बहुत खुश हुए और उन्होंने उनको अपने आश्रम में लेकर उनका सेवा के संस्कार किए। और कुछ दिन फिर वहां ईश्वरपुरी रहने लगे और रहकर नवद्वीप में निवास करते थे। और एक दिन की घटना है कि वो रास्ते में जा रहे थे, श्रीमन महाप्रभु जो छोटे से उम्र में थे और तभी उन्होंने पाठशाला चलाया करते थे, उनका जो संस्कृत टोली था वो चला रहे थे। तो एक दिन उनका भेंट श्रीमन महाप्रभु से हो गया और श्रीमन महाप्रभु से होने के बाद महाप्रभु उनको देखकर समझ गए कि ये मेरा सेवक है, पुराना भृत्य है। तो उन्होंने फिर भी वो सन्यासी है और उनसे उम्र से बड़े हैं, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद ईश्वरपुरी महाप्रभु को पूछने लगे कि आप कौन हो, आप इतना, क्योंकि महाप्रभु सुंदर दिख रहे थे। आज अनुलंबित भुजौ कनका बदा तो संकीर्तनै कपितरो कमलायताक्षम विश्वम भरम द्विजवरम जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय प्रिय करो करुणावतार। कि भगवान की जो भुजाएं हैं उनकी सुंदरता है, उनको प्रकाशित कर रहा था कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई महात्मा है। तो ईश्वरपुरी भगवान के इस गठन को देखकर, सारी क्रांति को देखकर वो कहने लगे कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप लगते हो कोई महापुरुष के समान, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो? तो उनके साथ निमाई पंडित के साथ कुछ शिष्य थे उनका, बोले इनका नाम जो है निमाई है और ये संस्कृत पढ़ाते हम लोगों को। तो ये सुनने के बाद उनको बहुत आनंद महसूस हुआ ईश्वरपुरी को। फिर उन्होंने महाप्रभु के साथ वार्ता करने लगे, फिर महाप्रभु ने उन्हें अपने घर में आमंत्रित करने लगे। तो जब ये आमंत्रित किए, घर पे लेके गए, घर में उनका सेवा सत्कार किए और उनको प्रसाद लेने के लिए आग्रह किए, तो उन्होंने ईश्वरपुरी ने उनके घर में जो भगवान की कमरा था वहां जाके बैठने लगे और कृष्ण की लीलाओं को बोलते गए और महाप्रभु ने उसके बारे में बहुत आनंद से सुनने लगे। हाँ, क्योंकि जब कृष्ण क्या होते हैं, अत्यंत खुश होते हैं जब उनकी लीलाओं के बारे में कोई कहता है तो भगवान महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। और ये महाप्रभु ईश्वरपुरी के मुख से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन को सुनकर उनके बहुत आनंद महसूस हुआ। और कुछ समय के बाद सती माता प्रसाद बनाए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए बोले और ईश्वरपुरी फिर महाप्रभु को कहे, निमाय तुम तो बहुत बड़े पंडित हो, एक काम करिए, मैं कुछ कृष्ण के बारे में कुछ लिखा हूं, कुछ गीत लिखा हूं, आप बहुत बड़ा पंडित हो, थोड़ा आप इसको देखिए, इसका संशोधन करिए, इसका कुछ करेक्शन करिए कि गलत तो नहीं है। तो महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले भक्त वाक्य कृष्ण वर्णन या हुईते जे 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 दोष देखे से पापिष्ट जन। महाप्रभु बोलने लगे कि कृष्ण का जो भक्त है वो जो बोलते हैं और जो भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन करते हैं वो क्या है, या इसमें जो भी व्यक्ति दोष देखता है वो पापिष्ट जन है, वो पापी व्यक्ति है। और ये श्लोक ऐसा कहने के बाद उन्होंने एक श्लोक कहे, मूर्खम वदन्ति वैष्णवाय धीर वदन्ति वैष्णवे उभयस्तु समं पुण्यम भावग्राही जनार्दन। के मूर्ख लोग जो कभी कभी भगवान को क्या कहते हैं, विष्णय, वो विष्णु नहीं कह पाते हैं, कभी विष्णय बोलते हैं, या कभी धीर जो पंडित है वो बोलते हैं विष्णु, लेकिन इसमें भगवान क्या देखते हैं, भावग्राही जनार्दन। भगवान तो भाव को देखते हैं, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि मैं विदेश में आया हूं, विदेशी लोग को पता नहीं है कि मुझे वो क्या बोलते हैं, गुरु। हाँ, वो मुझे गुरु कह के पुकारते हैं, गुरु का अर्थ है गाय। हाँ, गुरु के बदले वो प्रभुपाद को क्या कहते थे, गुरु। लेकिन प्रभुपाद कहते थे ये आवश्यक नहीं है वो क्या कह रहे हैं, उनका भाव क्या है वो आवश्यक है। उसी प्रकार इस श्लोक में भी कहा गया है कि वैष्णव जन जो भी लिखते हैं उनमें भले ही शब्द में गलती हो सकते हैं, या उनके वाक्य में गलती हो सकते हैं, या वर्णन में गलती हो सकते हैं, लेकिन उनका भाव जो होता है वो कभी गलत नहीं होता है। लेकिन बाह्य लोग हैं, भौतिकतावादी लोग हैं, वो इस बात को नहीं जानते हैं, वो इसमें जो पंडित लोग होते हैं वो त्रुटियां देखते हैं। तो इसलिए कहते हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे देखता है, गलत देखता है वर्णन में, हाँ, प्रभु बोले भक्त वाक्य कृष्णेर वर्णन, कि प्रभु कह रहे चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त के वाक्य है और कृष्ण के विषय में जो वर्णन करते हैं इसमें जो भी छिद्र ढूंढता है वो क्या है, दोष देखता है, वो पापिष्ट जन है। इसलिए वैष्णव कभी कभी कहने के समय उल्टा सुलटा हो जाता है, कभी इधर का बात उधर हो जाता है, लेकिन हमको उनके भाव को समझना चाहिए और उसमें छिद्र नहीं देखना चाहिए, जिससे ऐसे देखने से हमारा अपराध हो जाता है। तो इसी प्रकार अनेक लीलाएं हुए ईश्वरपुरी के साथ महाप्रभु का, और आगे जाकर ईश्वरपुरी ने क्या किए, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा दिए, और ये उनके गुरु के ही कृपा से ये संभव हो पाया कि उन्होंने श्रीमन महाप्रभु भगवान का गुरु बने। जैसे कि आगे के हम श्लोकों में देखें कि गुरु और हिजलिनेश हल्दर स्वामी महाराज भी कितने हमें बताया कि किस प्रकार गुरुनिष्ठ होना चाहिए, गुरु के शरणागत होना चाहिए, और यही हमारा सफलता का मूल कारण है, हमें भक्ति राज्य में टिके रहने का यही एक साधन है कि हम भगवान की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की किसका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे।